हमारा जो आज का टॉपिक है परम सत्य की पहचान, उस पर प्रकाश डालें आदरणीय उषा दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम सत्य की यथार्थ पहचान, क्योंकि राजयोग शिविर के अंतर्गत आप सभी कल से आए हैं और बहुत सारे विषयों पर आपको बड़े वरिष्ठ भाई बहनों ने बहुत सुंदर बातें भी सुनाई, परंतु अभी का जो सत्र है परमात्मा की सत्य पहचान, क्योंकि जहां तक आत्मा का विषय आता है तो हरेक के अंदर एक ही मान्यता होती है कि आत्मा के अस्तित्व को लोगों ने स्वीकार कर लिया, विज्ञान ने भी उसको स्वीकार किया। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया में अनेक मत मतांतर है, इतने सारे मते हैं कि दुनिया के मनुष्य भी इतने कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि आखिर सत्य क्या है। एक बार एक बहन मेरे पास में आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी मां से पूछता है हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो मां ने उस बच्चे को समझाया, बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहते इतने सारे भगवान थोड़ी हो सकते हैं, और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सब का हेड कौन है। वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, इसीलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहे बेटे मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, त्योहार होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है। यही कहता है कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज्ड हो जाता हूं, मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं, राम में करूं, कृष्ण में करूं, देवी में करूं, गणेश जी में करूं, हनुमान जी, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट। तो इसलिए वो मंदिर नहीं जाता है। मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास उसके प्रश्नों का जवाब नहीं तो क्या कहे। तो ये एक मां का प्रॉब्लम नहीं है, आज भारत में इतनी सारी मां हैं जिनका ये प्रॉब्लम है। ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे प्रश्न पूछते हैं और उनका जवाब माँ बाप के पास नहीं होता है तो बच्चे नास्तिक बनते जाते हैं। तो इसलिए सत्य क्या है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, सब में परमात्मा है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड. भगवान अगर है तो प्रूफ दो. अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो कितना कंफ्यूज हो गया कि इसमें से सत्य क्या है, ये है ही नहीं. आपका विवेक क्या कहता है, ये सब सत्य है, इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने जाना नहीं, क्या कहेंगे? हाँ, सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने जाना नहीं. और जितना ही सत्य को समझने का प्रयत्न किया उतना ही सत्य से दूर चले गए. तो इसलिए सत्य को जानना जरूरी है. जैसे वो कहानी आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है. थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया. एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है. अब आखिर हाथी कैसा था ना? सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? सत्य कुछ और है. यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि ये पांचों सूरदासों को कहा गया, एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है हाथी कैसा है. आपने जो समझा उसको जाकर बताना है वन बाय वन. अब पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है. थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है. थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है. चौथा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है. और पांचवा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है. अब ये छठा सूरदास पांचों की बातें सुनने के बाद क्या कंक्लूजन पर आएगा कि आखिर हाथी कैसा है? कितना कंफ्यूज होगा. हर कोई आता है अलग बात कहता है, हर कोई आता है अलग बात कहता है, आखिर ये प्राणी है कैसा? फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि चलो, ये पांच ने महसूस तो किया, उन्होंने फील किया और सुना रहे हैं. हो सकता है ऐसा कोई प्राणी हो जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा. उसने विश्वास कर लिया. अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है, तुमने जो समझा. एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है हाथी कैसा है. ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो फील नहीं किया, है ना, मैंने तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन पांच ने जो फील किया, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुझे बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। अब ये सातवां सूरदास, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा हाई था, उसने कहा, अरे कोई प्राणी रंग बदल सकता है ना, लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है, और तुमने कैसे मान लिया? तो छठा सूरदास क्या कहते, पांच ने तो फील किया ना, वो झूठ बोलते हैं क्या? तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवा कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, मैं नहीं मान सकता। ठीक है, कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से, तपस्या की शक्ति से ईश्वर के कोई गुण को महसूस किया और उन्होंने आकर मनुष्य को सुनाया। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया, कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया, कण कण में परमात्मा। किसी ने कोई इष्ट देवता में कुछ महसूस किया, कहा वही परमात्मा है। किसी ने निराकार में कुछ महसूस किया, वही परमात्मा है ना। और वो ऋषि मुनियों ने जो महसूस किया, उन्होंने मनुष्य को सुनाया। अब मनुष्य ने विश्वास कर लिया, ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सत्य होगा। अब वो मनुष्य आज की जनरेशन के लोगों को समझाना चाहते हैं, ये सब परमात्मा है। तो आज की मनुष्य, आज की जनरेशन जिसका आईक्यू लेवल हाई है, वो क्या कहते हैं, हाउ कैन यू बिलीव दिस, हम तो नहीं मानते, इतने सारे परमात्मा थोड़ी हो सकते। तो मनुष्य ने क्या कहा, अरे ऋषि मुनियों ने कहा, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज का मनुष्य क्या कहता है, हम नहीं मानते हैं। ठीक है ना। तो हमारी हालत भी यही हुई, और इसीलिए सत्य को हम समझ ही नहीं पाए। आज उस सत्य परमात्मा का परिचय हम देखेंगे। लेकिन कई बार कई लोग क्या पूछते हैं, क्या ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाएंगे वही हमें मानना है? नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मते हैं, ऑलरेडी आप कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आपको कसौटी देंगे, वो मीटर देंगे चेक करने का, कि हु इज गॉड, राइट? मीटर तो चाहिए ना चेक करने वाला। तो मीटर है कि परमात्मा उसको कहेंगे जिसके अंदर पांच बातें हो। पहली बात, सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है ना। तो जब एक है तो वो एक ही होना चाहिए, राइट? दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सभी का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है, उसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक नहीं होना चाहिए। तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व परे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, लेकिन परमात्मा इन सभी चक्र से परे हैं। कौन से चक्र? जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र। तो जो इन सभी चक्रों से परे है उसको कहेंगे परमात्मा, राइट? चौथी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हो, तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानता हो, और जिसने त्रिमूर्ति को रचा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। तो ये तीन की महिमा भी उसके साथ जुड़ती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए कहा मां शारदा अगर धरती का कागज बनाए, सागर की स्याही बनाए और जंगलों की कलम बनाए और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांच बातें हैं मीटर जिस पर चेक करना है कि परमात्मा किसको कहा जाए। अब पहली बात लो, जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, क्या नेचर के साथ ये पांचों बातें लगेगी? नेचर को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे नहीं। क्या नेचर को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा है। तो चित्र और चित्रकार एक तो नहीं हो सकता, अलग होना चाहिए। तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना अज्ञान है, इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने कह दिया सत्य तो नहीं है, राइट? क्लियर? दूसरी पॉइंट ले, सो नेचर इज नॉट गॉड, नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट? अच्छा, दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम मंदिर में जाकर के ये क्यों गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे? अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? वो माता पिता है और हम उसकी संतान है, क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है। तो आत्मा सो परमात्मा अज्ञान है? ज्ञान तो नहीं है, अज्ञानता के कारण कह दिया। क्लियर? आगे बढ़े, तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, अज्ञानता के कारण दो दो बातें किया, एक तरफ प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, फिर प्रकृति परमेश्वर की रचना है भी कहा, राइट। दूसरा आत्मा सो परमात्मा भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान है भी कहा, दो दो बात किया ना। ऐसे ब्रह्म ईश्वर है भी कहते हैं, और दूसरा क्या कहते, पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म में निवास करने वाला परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना राइट है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना राइट है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना राइट है। तो ब्रह्म ईश्वर कहना अज्ञान है ना। ब्रह्म महातत्व है, परमात्मा तत्व तो नहीं है, तो उस तत्व में निवास करने वाला होगा, राइट, क्लियर। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच परमात्मा कण कण में है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? आपका विवेक उस बात को स्वीकार करता है? नहीं करता है। आज कोई हमें कह दे फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा, हमें कितना इंसल्ट महसूस होता है। और ईश्वर को हम कहते हैं जानवर में भी है, कूड़े कचरे में, गंध गटर में, सब में है, ये भगवान का अपमान नहीं हुआ? इंसल्ट नहीं हुआ? अच्छा, दूसरी बात, जब कोई हमें, हम ये बात कहते तो लोग क्या कहते, नहीं सभी प्राणियों में, कण कण में माना हर इंसान के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर हर एक के अंदर आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करे, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? किसका? आत्मा का। अगर आत्मा का ये कर्म है तो परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या उसके पास इतनी शक्ति नहीं जो आत्मा को कंट्रोल करे? आज घर में बच्चे होते हैं या गली में बच्चे खेलते हैं और किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, तो आप देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे कि बेटा क्या चाहिए, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, कहते हैं ना। ये तो नहीं कहते उसका कर्म वो जाने, जाने दो, हमारा क्या, लड़ने दो, कहते हैं ऐसा? ईश्वर हम सबके अंदर बैठा है और मनुष्य इतना झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, खून खराबा कर रहा है और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, गीता के अंदर, भगवत गीता के अंदर चौथे अध्याय में भगवान के ये महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, फिर अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणायम साधुनाम, है ना। भावार्थ क्या है उसका, भावार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं, ये वायदा है। अब जब ये वायदा है तो भगवान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म क्यों? अच्छा, फिर कौन आएगा? और कौन सही है, जो आया वो सही है या जो यहां व्यापक है वो सही है? व्हाट इज ट्रूथ? जो आएगा वो, तो इसका मतलब यहां वाला तो कोई काम का नहीं है, वो भगवान है ही नहीं, यही कहेंगे ना। जो आएगा वो अगर भगवान है तो जो यहां है वो कौन है? वो भगवान है नहीं? तो सर्वव्यापी कौन है, ईश्वर है या शैतान है? आज सब में व्यापक कौन है? पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये व्यापक है ना। तो इसीलिए तो हिरण्यकश्यप क्या कहता था, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, कहता था ना। तो जो अहंकार है वो भगवान कहलाता है अपने आप को, जो सत्य नहीं है। तो सर्वव्यापी भगवान है या ये विकार है? विकार है, तो ईश्वर तो है ही नहीं, है ना। दूसरा, जब हमको कोई बात पूछता था या बताता था, हमें मालूम नहीं होता था, तो क्या कहते थे? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, फिर हु इज दिस ऊपर वाला? ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है, सर्वव्यापी कौन है, ऊपर वाला कौन है, एक है या अलग है? अलग है, है ना। तो सत्य क्या है? परमात्मा सर्वव्यापी है नहीं है? सर्वव्यापी कौन है? शैतान है, विकार है, विकृति है, जो आज धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है सबके अंदर। आज एक छोटे बच्चे के अंदर भी देखो, उसका कोई खिलौना आप ले लो, कितना गुस्सा आता है उसको, है ना। कल किसी ने एक वीडियो दिखाया, एक छोटा बच्चा आइसक्रीम लेने जाता है उसकी माँ के साथ, तो वो आइसक्रीम वाले ने उसको दिया, वो पकड़ा तो नीचे का कागज उसके हाथ में आया, वो आइसक्रीम ले लिया। दूसरी बार दिया तो खाली वो कोन आया, अंदर दूसरा आइसक्रीम कोन था, वो ले लिया उसने, तो उसने फेंक दिया। इतना गुस्सा आया वो बच्चे को, इतना गुस्सा आया। तो सर्वव्यापी कौन हुआ? विकार है। आज बच्चे बच्चे के अंदर भी कितना क्रोध आता है, है ना। तोड़ फोड़ कर, उसके हाथ में से मोबाइल छीन करके देखो क्या करता है, कितना चिल्लाता है, तोड़ फोड़ करना चालू कर देता है कि नहीं करता है। तो कहने का भावार्थ कि सर्वव्यापी भगवान थोड़ी है, भगवान होगा, अगर भगवान होता था तो दया प्रेम करुणा ये व्यापक होना चाहिए, ईश्वर के गुण व्यापक होना चाहिए। लेकिन शैतान व्यापक है तो वो क्या कर रहा है? तोड़ फोड़, मारा मारी, ये काट मार, यही कर रहा है, हिंसा यही कर रहा है। इसलिए आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि अरे जैसे फूलों में सुगंध समाई है, ऐसे ईश्वर सब में समाया हुआ है, समाया है, उसको कहो सब में शैतान समाया है, उसकी खुशबू, उसकी बदबू निकल रही है, काम क्रोध के रूप में उसकी बदबू फैल रही है। कोई अगर आपको कहे कि भाई जैसे हवा में दिखाई नहीं देता है, इसी तरह से हवा तो है ना, हवा दिखाई नहीं, इसी तरह भगवान है, तो मानेंगे? नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अभी तक किसी को प्रश्न है? है किसी को? क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, पांचवी बात, जब हम ये कहते निराकार है, तो निराकार यानी नाम रूप से न्यारा। अब इस संसार में नाम रूप से न्यारी कोई चीज है ही नहीं। हर चीज को अपना नाम और रूप जरूर है। हवा जो दिखाई नहीं देती है, नाम है, रूप है। क्या अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है, चक्रवात है। और शांत प्रकृति दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते? वो भी दिखा सकते हैं, एकदम शांत पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर या उसमें दिखाई देता है। तो कहते कितनी शांत प्रकृति है ना? तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार ने अपने चित्र के अंदर डाल दिया तो नाम रूप आकार बिना कोई चीज है नहीं है। तो ईश्वर नाम रूप बिना कैसे हो सकता है? उसका भी अपना नाम और रूप तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो कौन सा है? तो जिस तरह पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश पुंज है। इसीलिए गीता के अंदर जब अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो हजारों सूर्य से तेजोमय का साक्षात्कार कराया भगवान ने, जो परम प्रकाश अनंत दिव्य तेजोमय शक्ति है वो परमात्मा है। आत्मा ज्योति बिंदु है, इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं। तो उसका पिता कैसा होना चाहिए? वो भी वैसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, जिसकी पूजा, अब उसके साथ वो पांच बातें, मीटर लगता है कि नहीं लगता है चेक करो। तो जिसकी पूजा भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं, ज्योतिर्लिंगम, और ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति है ना, तो ज्योति की आकृति है। ज्योति की पूजा कैसे करें? इसलिए भारत वालों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाएं, श्रद्धा, फूल आदि चढ़ा सके, पूजा कर सके। और इसीलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम है जो आज भी महान तीर्थ स्थान है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वरम के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, और वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, होती है ना। अच्छा, भारत से बाहर जाओ पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती। तो जितने भी शिव के मंदिर है भारत में, कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो, है ना? छोटा सा मंदिर भी महादेव का जरूर मिलेगा। बाकी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाओ श्री राम श्री कृष्ण की पूजा ज्यादा मिलेगी, साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ मुरुगन की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। जितने भी मंदिर होते हैं वो मंदिरों के नाम भी या नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं, या गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, है ना, या रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मन, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है, वो दिव्य ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है ना। इसीलिए शिव का जब मंदिर बनता है, शिव का जब मंदिर बनता है और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो द्वार से नहीं लाते हैं। शिवलिंग को द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से लाएंगे, लेकिन परमात्मा की शिवलिंग को ऊपर से उतारते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में भी यादगार है कि एक परमात्मा ही अवतरित होते हैं, किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आते हैं। बाकी सभी देवी देवताएं कोई ना कोई मात पिता से जन्म लेते हैं, इसीलिए उनको देवों का भी देव महादेव कहा कि सभी देवताओं ने भी उसकी पूजा की। श्री राम ने रामेश्वरम में उसकी पूजा की, तो श्री कृष्ण ने वृंदावन में उसकी पूजा की गोपेश्वर के रूप में, गोपों के साथ मिलकर के। तो जिन देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रि में किया, वो कौन थी? नव दुर्गे कौन है? तो कहते शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो इसीलिए देवों के भी देव महादेव वो एक ही माना गया है। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर करते। कौन सी? जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अरे जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का क्वालिफिकेशन अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ, कल्याण करने वाले, और शंकर के लिए कहते हैं तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है, प्रलयनाथ है। तो एक भोलेनाथ कल्याणकारी, एक प्रलयनाथ, तो नाम अलग, स्वरूप अलग, काम अलग, तो एक कैसे हो सकता है? एक होना चाहिए। शिव को हम, शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में बताते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था और उसको ध्यान करने की क्या जरूरत थी? तो उसने भी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव का ध्यान किया, इसीलिए कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग। पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, जहां बैठकर शंकर ने भी उसका ध्यान किया। क्यों किया? क्योंकि उसको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खुलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब तो ये कार्य करे। इसीलिए है ना। अच्छा, शिव को कहते त्रिदेव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता है। तो शंकर शिव की रचना है, तो रचना और रचयिता एक नहीं हो सकता है, अलग है। जब भी कोई मंत्र देंगे ना, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देंगे, ओम नमः शंकराय कहा किसी ने? अगर एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहते हैं नहीं? महाशिवरात्रि। भावार्थ ये, शिव और शंकर एक नहीं, अलग है। क्लियर हो गई बात? ये तो हुई भारत वालों की बात। अच्छा, भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मक्का जाता है तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, निराकार है वो भी। और कहा जाता है कि मक्का के अंदर पहले 360 देवी देवताओं की मूर्ति थी, परंतु मोहम्मद पैगंबर साहब जब आए तो उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी मतभेद लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको वहां से मदीना भेज दिया, वहां जाके प्रचार करो, यहां नहीं। वहां जाके प्रचार करने लगा अल्लाह एक है। धीरे धीरे उसकी वो विचारधारा से लोग जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग हो गए तब वो पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है ना। और इसीलिए उसकी मान्यता, उसकी स्थापना स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। तो तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है, हज पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो दर्शन करने है ना। जिसको भारतवासी कहते हैं मक्केश्वर, मक्का का ईश्वर, मुसलमानों का ईश्वर है ना। लेकिन जो हज पर जाते हैं, हज पर जाना इतना आसान नहीं है। हज पर जाने के नियम बहुत कड़े हैं, इसलिए सब नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो हज पर जाता है वहां जाके क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, तो नूर माना लाइट, तेज। ज्योति माना लाइट, तेज। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, तो क्रिश्चियन धर्म में जीसस ने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड। उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं उसका बेटा हूं, है ना। इसीलिए जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए तो गुरु नानक देव ने बहुत सुंदर तरीके से उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजोनी। जो निराकार है, निर्वैर है, जिसको काल कभी नहीं खा सकता है ना, वही एक सत्य नाम है जो किसी योनियों में नहीं आता है, उसको कहेंगे परमात्मा। एक नूर, उन्होंने भी कहा लाइट है। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? तो कहते सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति यानी जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिला, तो उसको परमात्मा माना। कोई व्यक्ति को, कोई आकृति को 24 तीर्थंकरों में किसी को उन्होंने परमात्मा टाइटल नहीं दिया, राइट। और आगे जाए महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी जापान चले जाओ, वो भी मेडिटेटिव पोज में बैठे हैं, मेडिटेशन में है। आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर, महात्मा बुद्ध के मंदिर में जाएंगे आप तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रहता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन शेकी, यानी जो शांति का दाता है। वहां बैठ के मेडिटेशन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे और कहते हमारा मन एकदम रिलैक्स हो जाता, शांत हो जाता, सारा टेंशन खत्म हो जाता। और आगे जाए तो पारसी धर्म में कहा जाता है, पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेके आए थे, जो अखंड ज्योत निरंतर चलती रहती उसको कहेंगे परमेश्वर। और आगे जाए तो सभी धर्म के अंदर एक ही मान्यता है, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान कहा? तो फिर हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? जब उसने भी कहा सबका मालिक एक, उसको याद करो, तो हम उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? जिसका उसने इशारा किया उसकी करनी चाहिए या उसकी करनी चाहिए बताने वाले की? आज एक लड़के की शादी होती है और बीच में दलाल होता है, पंडित जो कराने वाला, लड़की उसी के साथ भाग जाएगी तो क्या कहेंगे? अरे भाई पति के साथ जाना चाहिए ना, अभी ये तेरा पति नहीं, मैं तो इसके साथ, इसने शादी कराई ना, इसके साथ ही जाती हूं। तो साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, उसको याद करो, मैं भी उसको याद करता हूं। हम कहते हैं नहीं, हम तेरे को ही याद करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, अब क्या कहेंगे? ईश्वर को क्या कहते? पतियों का पति, यही कहा ना। तो पतियों के पति को याद करना है या दलाल को याद करना है, किसको याद करना है? तो ये तो यही हो गया ना कि कन्या का पति और है लेकिन भाग रही है वो पंडित के साथ, ऐसा ही हो गया ना। तो सही है, तो हम रास्ता भूले कहां से? जब सबने कहा कि वो परमात्मा है, किसी ने ज्योति कहा, लाइट कहा, नूर कहा, प्रकाश कहा, निराकार कहा, मालिक कहा, तो हम रास्ता भूले कहां से? हम क्यों रास्ता भूले, उसको क्यों भूल गए? जब इतनी निशानियां हैं फिर भी हम भूल गए? विकार के कारण भूल गए, विकार के कारण भूल गए। और मनुष्य अभिमान तो इतना रखता, हमको सब मालूम है। अभिमान तो कितना रखता है, हमको सब कुछ मालूम है। किसी को समझाने जाओ तो क्या कहता है? हमको सब कुछ मालूम है, हमको सब कुछ मालूम है, ईश्वरी व्यापी है। फिर वही आ गए ना? तो हम रास्ता भूले कहां से? शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, है ना? तो सर्वोच्च शक्ति है जिसको उत्पन्न करने वाला ना कोई माता पिता बंधु गुरु शिक्षक कोई नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी जो सभी चक्रों से पर है, जन्म मृत्यु दे के संबंध, कर्म कर्म का फल, पाप पुण्य सुख दुख सभी चक्र से परे है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अजन्मा, अकाल मूरत, जिसको काल नहीं खा सकता है। तो जन्म मरण से परे। अच्छा, अव्यक्त माना जिसको देह व्यक्त स्वरूप नहीं है। अच्छा, जब देह ही नहीं है तो अकर्ता भोक्ता, न कर्म करता है न फल भोगता है ना। गाए ना इसकी महिमा में, गीता में ये महिमा, मैं अकर्ता भोगता हूं, न कर्म करता हूं न फल भोगता हूं। अच्छा, न पाप कर्म करता हूं न पुण्य कर्म करता हूं, मैं ही पापियों का उद्धार करने वाला हूं। कहा है गीता में, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। क्या कहते, पतित पावन सीताराम। जो पतितों को पावन बनाने वाला है वो सीताओं का, वो परमेश्वर राम है ना। और फिर कहा, दुख हरता सुख करता, हरि कहते हैं ना उसको, हरि माना दुख हरने वाला, सुख देने वाला। तो सुख दुख के चक्कर में नहीं आता होगा तभी तो हरेगा, तभी तो सुख देगा। तो सभी चक्रों से पर एक ही परमेश्वर। अच्छा, पर होते हुए भी सब कुछ जानता है, ज्ञाता है, तीनों कालों को जानता है, आदि मध्यंत। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लाइन लगाते हैं ना, तीन लाइन माना आदि मध्य अंत। तीनों का ज्ञाता है, उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ाते हैं, अर्थात तीनों लोकों का नाथ है ना, त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ और त्रिनेत्री, बीच में एक आंख होती है, कि मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री है। और उसी को त्रिदेव कहा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, राइट। तो सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, उसकी महिमा में ही सारे गुण है, उसके मंदिरों के नाम में ही सारे गुण है। कितने अनंत नाम है और अनंत महिमा है, कि सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है। तो ये पांचों बातें कसौटी पर एक ही खरा उतरता है, हाँ, मीटर में एक ही बैठता है, और वो कौन है, ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव, है ना। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे कोई भी इंसान का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, दूसरा आइडेंटिटी, फोटो चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, चौथा एड्रेस, और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो ईश्वर के परिचय में भी ये पांच बातों को देखा, जिसका नाम है सदा शिव, सदा कल्याण करने वाले। आज की दुनिया में मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं, कर्तव्यवाचक नहीं होते। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, है ना। लेकिन परमात्मा का नाम सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला। आजकल तो मनुष्य ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिया, क्वालिटी एक भी नहीं होंगी, है ना। और वो भी एक नाम नहीं चाहिए, डबल नाम चाहिए, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सत्य नारायण, डबल नाम चाहिए। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम, शिवा रामा कृष्णा, है ना, तीन तीन नाम, तीन इंजन लगा देते हैं, क्वालिटी एक भी नहीं होंगी। तो परमात्मा का एक ही नाम सदा शिव, उसका स्वरूप है, आइडेंटिटी क्या है, ज्योति स्वरूप, प्रकाश, नूर, लाइट, निराकार स्वरूप, है ना। अच्छा, तीसरा क्वालिफिकेशन, पांच बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। एड्रेस, पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, है ना। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य, क्योंकि धर्म ग्लानी का समय हो गया ना, तो यही समय पर तो आएगा और आकर के अधर्म का नाश करके सत धर्म की पुनः स्थापना करना, ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। तो क्लियर हो गया पूरा परमात्मा का लेसन, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी अगर आपका बच्चा पूछे ये सभी भगवानों का हेड कौन है, कौन है, सदाशिव, क्लियर है एकदम, हम अपने मन में क्लियर होंगे तो जनरेशन को गाइड कर सकेंगे, आने वाली जनरेशन को भी हम क्या करेंगे, गाइड कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।